Market Monster. Good evening, listeners, and welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual funds and related matters. You can call us on 2331-4444 and 2342-1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code of the capital. That's 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh.
नमस्कार रंगा और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2342-1050 और 2331-4444. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकाश रस्तोगी. आकाश, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ रंगा.
थैंक यू सुबोध. द टॉप स्टोरीज. इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सर्जेस 17.7% टू 19.58 लाख करोड़ रूपीज इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24. Global gold prices surged for the fifth straight week with a jump of 2% on fresh geopolitical tensions. And HDFC Bank reports a standalone net profit of 16,511 crore rupees for the Jan-March quarter of FY 2024.
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.7% बढ़कर 19,58,000 करोड़ रुपए हो गया. दुनिया में फैले तनाव के बीच लगातार पांचवें सप्ताह बढ़त का रुख बनाए रखते हुए सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2% बढ़ी और एचडीएफसी बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की जनवरी से मार्च तिमाही में 16,511 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ घोषित किया. आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं. वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.7% बढ़कर 19,58,000 करोड़ रुपए हो गया है. पिछले साल यह 16,64,000 करोड़ रुपए था. इस वित्त वर्ष का संग्रह बजट अनुमान से 7.4% यानी 1,35,000 करोड़ रुपए ज्यादा है. पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह का बजट अनुमान 18,23,000 करोड़ रुपए रखा गया था. बाद में उसे बढ़ाकर 19,45,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था और अनुमानित संग्रह उस संशोधित अनुमान से भी 13,000 करोड़ रुपए अधिक है. यह आंकड़े वित्त मंत्रालय ने जारी किए हैं. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिफंड को समायोजित करने से पहले प्रत्यक्ष कर के सकल संग्रह में उससे पहले के वित्त वर्ष की तुलना में 18.5% यानी 23,37,000 करोड़ रुपए की अच्छी बढ़त दर्ज की गई है. व्यक्तिगत आय कर का सकल संग्रह 12,01,000 करोड़ रुपए रहा जो पिछले साल की तुलना में 24.26% अधिक है, जबकि कुल वृद्धि 25.23% यानी 10,44,000 करोड़ रुपए की रही. वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार ने 3,79,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर रिफंड जारी किए जो एक साल पहले की तुलना में 22.74% यानी 3,09,000 करोड़ रुपए अधिक है.
Well, let's start taking phone calls and joining us first in the show is Vishnu from Delhi. Good evening, Vishnu, and welcome to the program.
Yes, good evening. Thank you very much. And
yeah, go ahead. Put your question.
Yes, actually, my question. Actually, I'm a college student, so I want to start investment. So I'm very confused regarding investment. So which would be the best option or best thing to invest in?
Okay.
So first of all, I would like to say that you have taken a very, very right step. That it's actually very good to know that you are, you know, thinking about investing at such a young age. So So first of all, what you need to decide on is that the purpose for investing and approximately in what duration would you need this money. Say, if you would be needing this money within a few years, then debt or fixed income should be the option for you. Maybe to inculcate the habit of investing, you can start simply with a recurring deposit. And, you know, having said that, if it is a case that, you know, you don't need this money for the next 5 years or so, then you should initiate investing into an aggressive hybrid fund. So aggressive hybrid fund is a very good option for the beginners, especially if you haven't invested in equities before. So what this fund does is it invests around 70% in equities and the rest in fixed income, making it a perfect choice for the beginner as it cushions the downfall.
आकर कुछ अच्छे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स बता सकते हैं.
हाँ जी, सो एक ये आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट अच्छा फंड है, और साथ ही में आप डीएसपी का बॉन्ड एंड इक्विटी भी ले सकते हैं. सो बोथ दीज फंड्स आर गुड टू इनिशिएट इन एसआईपी.
जी, अगले कॉलर हैं जयपुर से जितेंद्र. जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हाँ सर, थोड़ा एक दो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का नाम बता दीजिए, मतलब, और एक दो मल्टी कैप बता दीजिए.
सो देखिए, जो आपके अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के लिए आप आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट ले सकते हैं, और साथ ही में जैसे भी मैंने बताया, आप एक ये डीएसपी का बॉन्ड एंड इक्विटी ले सकते हैं. दोनों ही अच्छे फंड है. और अगर आप फ्लेक्सी कैप में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ये पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है. और साथ ही में आप पराग पारिक के अलावा आप एक कोटक का भी फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं, वो भी अच्छा फंड है. नहीं तो आप मिराय का लार्ज एंड मिड कैप फंड देख सकते हैं, वो भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन वो लार्ज और मिड कैप दोनों स्टॉक्स में करते हैं, तो एक ग्रोथ पोर्टफोलियो के लिए अच्छी चॉइस रहेगी.
राइट, लेट्स मूव ऑन एंड टेक आवर नेक्स्ट कॉलर. वी हैव योगेश जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली. गुड इवनिंग योगेश, एंड वेलकम टू मार्केट मंत्र.
थैंक यू. गुड इवनिंग.
या गो अहेड, पुट योर क्वेश्चन.
यस, मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में जो हम टैक्स हार्वेस्टिंग करते हैं, क्या इसका कंपाउंडिंग पे कुछ बुरा असर पड़ता है? और एक मेरा सवाल ये है कि पहले जैसे कहा जाता था कि स्मॉल कैप में एयूएम कम हो तो फंड अच्छा रहता है, बट ये बॉन्ड और बाकी फंड ने इसको जहां तक ब्रेक किया है, एयूएम में और परफॉर्मेंस में आखिर क्या कोरिलेशन है एक्चुअली?
ये साकार,
देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन था कि मैं पहले इनफैक्ट आपको ये एयूएम वाला क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगा. देखिए, जो एयूएम का हम लोग स्मॉल कैप को कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि स्मॉल कैप में जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो कंपैरेटिवली ढूंढनी मुश्किल होती है. वहां पे जो स्टॉक्स होते हैं उनमें लिक्विडिटी का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आमतौर पे कहा जाता है कि अगर बहुत बड़ा एयूएम होएगा तो फिर एक फंड मैनेजर को उसको ठीक से डिप्लॉय करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है. बट उसी के साथ में इसका एक कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मतलब ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि अगर आपका एयूएम बड़ा ही होगा तो आपको दिक्कत देगा ही देगा. जैसे कि आपने खुद एक बताया, निपॉन का एग्जांपल दिया, उसका अच्छा खासा एयूएम है और अभी भी वो फंड जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो बहुत ज्यादा उसके बारे में आप मत सोचिए अभी. अगर आपका स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना है, आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे जाइए और फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं.
राइट.
जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से अमित. अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
हेलो.
जी अमित, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
दिस इज अमित फ्रॉम गाजियाबाद.
जी
सर, आई हैव टू क्वेश्चन. वन क्वेश्चन इज कि लाइक आई हैव इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड. I want one is a Parag Parikh Flexi Cap Fund, 10,000 rupees, and second is Kotak Emerging Equity Fund, 4,000 rupees, and third is ICICI Value Discovery Fund, 5,000 rupees.
Okay.
So I want to know is it a good portfolio and or I need to add or minus any mutual fund. This is the first question. And second question is ki I also looking to invest in one of the debt funds, fixed income fund. So I want to know the name for around 8 to 10 months. So okay. I want to know the name of some. Can you suggest some name of this fixed income fund?
Okay, fine.
Thank you.
Right.
So starting with your selection for the equity funds, so all these three funds are flexi-cap in nature and, you know, they are suitable for the growth category. So having said that, all the selections are good. All these three funds are good. So you can, you know, I mean, without giving it a second thought, you can simply continue with your investments in these funds as far as you're investing for a horizon of more than 5 years. And coming to your question related to the fixed income fund, if you want to invest for the next 8 to 10 months, so I believe a liquid fund would be a good option. And for that, maybe you can go with the AB for the liquid fund. I mean, almost all funds are good. I mean, they do pretty well. So maybe you can take ABSL liquid fund, or maybe you can also take the liquid fund from the ICICI. But don't go beyond the liquid category if you're investing just for 8 to 10 months.
Okay, fine. Let's go across to Hawra, from where we have Mofizul Haq.
Tech Mofizul Haq.
Yeah, good evening. Welcome to the program.
हावड़ा से बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल हावड़ा वेस्ट बंगाल
जी अपना सवाल पूछिए
हाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं एसबीआई म्यूचुअल फंड अभी खरीद करने से ठीक है अच्छा होगा कि
एसबीआई का कौन सा फंड
एसबीआई म्यूचुअल फंड
देखिए एसबीआई म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स होती है तो आप पर्टिकुलरली कौन सी स्कीम की तरफ देख रहे हैं इक्विटी में भी बहुत स्कीम्स है हाइब्रिड भी है और डेट भी है
उनसे संपर्क नहीं है लेकिन अगर हम ज्यादा लोगों की श्रद्धा इक्विटी के लिए या हाइब्रिड के लिए होती है तो उस पर आप बता सकें
देखिए मैं फिर यही कहूंगा कि एसबीआई एक अच्छा फंड हाउस है उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी डिपेंड करता है कि जैसे कि मैंने कहा अगर आप हाइब्रिड से शुरू करना चाहेंगे तो भी उनके फंड्स में ऐसी कोई मतलब खराब दिक्कत नहीं है नहीं तो उनके जो इक्विटी फंड्स है वो भी अच्छे हैं आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं बट उससे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले अपना ड्यूरेशन पक्का करें आपका जो गोल है उसके हिसाब से एक सही एसेट क्लास चुनकर और फिर फंड चुने
ओके फाइन लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द अदर न्यूज आइटम्स दैट वी आर ट्रैकिंग फॉर यू दिस इवनिंग rising for the fifth straight week, global gold prices jumped over 2% this week on fresh concerns about the geopolitical situation following the Iran-Israel conflict. Gold prices rose 2.1% during the week to end at $2,392 per ounce on Friday. The yellow metal posted its fifth consecutive weekly gain, despite a firmer US dollar index and higher US yields. The 10-year US yields dipped one basis point to 4.62% on Friday. However, the yields were up around 2.5% on a weekly basis on hawkish Fed speak amid encouraging macroeconomic data in the US. And just to remind our listeners about today's program, as you all know, Sundays is dedicated for mutual fund and related issues, and it's a phone-in program, so it's your program. You can put any query, any question, any doubt which you have related to mutual fund and other issues. And for that, our phone numbers are 2331-4444, and our second line is 2342-1050. And if you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers.
Ji. अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं इंदौर से अनिल अनिल स्वागत है आपका सवाल पूछें
सर गुड इवनिंग नमस्ते आप पंकज गुप्ता की पूरी टीम को नमस्कार
जी नमस्कार
सर हमारा सवाल ये है कि अभी जो म्यूचुअल फंड है या छोटे निवेशक है उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है जो अपने मतलब 2000
Okay, fine. About the small investors, he wants to know, Akar, that what would be the right way? Maybe, you know, he is kind of focusing on a systematic investment plan.
Right. So, I would like to say ki dekhiye jo mutual funds hai, ye chote niveshakon ke liye hi bana hai. Jo iska sabse bada plus point hai, wo yehi hai ki agar aapke paas mehez 500 rupaye bhi hai mahine mein invest karne ke liye, तो आप एक म्यूचुअल फंड से इक्विटी मार्केट का एक पूरे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो पहली बात तो है कि चाहे कितना ही छोटा निवेशक हो वो म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकता है। और रही बात जो सही तरीका है वो यही है कि आप SIP से करिए, हर महीने करिए। एक आप अमाउंट डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपका अमाउंट है जो आप इजीली अलग कर सकते हैं, अपना एक पर्पस और गोल डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको पैसा 5 साल के बाद चाहिए तो आप एक इक्विटी फंड में करिए। आपने पहले कभी इक्विटी फंड्स में नहीं करा है, आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड लीजिए। उसका मेजर पोर्शन इक्विटी में रहता है, थोड़ा सा फिक्स इनकम में रहता है, जो कि मार्केट फॉल में आपके फंड को बाकी फंड से गिरते हुए हेल्प करता है, मतलब कम गिरने उससे वो कम गिरता है।
राइट, लेट्स टेक अवर नेक्स्ट कॉलर। वी हैव प्रताप जॉइनिंग अस फ्रॉम मुंबई। गुड इवनिंग प्रताप एंड वेलकम टू मार्केट मंत्र।
नमस्ते, नमस्ते सर।
नमस्कार।
हाँ, ढाई साल पहले हमने धीरेन्द्र जी ने हमको एडवाइस दिया था SBI म्यूचुअल फंड, SBI फोकस फंड में। हमारे ग्रांड सेंड 5 साल का था तभी, तो रिव्यू करने के लिए बोला था 2.5 साल के बाद में। तो आज कुछ चेंज करना चाहिए कि वो कंटिन्यू करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन है, वो दादी जी है वो बैंक रिटायरी है, तो उसके पेंशन फंड में से वो 3,000 रुपया और इन्वेस्ट करना चाहती है वो हमारे सारो बाबू के लिए, तो आप सजेस्ट करेंगे तो कौन से फंड में करना चाहिए? थैंक यू सर।
राइट सर, सो आकार, यू नो द SBI इज फोकस्ड इक्विटी फंड, ही वॉन्ट्स टू नो वेदर टू होल्ड टू एग्जिट।
नहीं, इट्स डूइंग वेरी वेल। सो a bit of the performance over the last you know, maybe on the short term basis I would say it hasn't been that good, but having said that, on the basis of the long term performance, SBI focused equity continues to be a good fund. So I would suggest you can you know, continue investing in the SBI equity focused equity fund. And jo aapne bataya ki jo ek dusre fund ki zarurat hai, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर होराइजन आपका 5 साल से ज्यादा है तो एक इक्विटी फंड ही रखिए। उसके लिए ये SBI फोकस्ड इक्विटी फंड भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है, नहीं तो आप एक ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी डाल सकते हैं। ये दोनों ही अच्छे फंड से, प्योर इक्विटी फंड से, और एक लंबे होराइजन के लिए एक अच्छा कैपिटल आपको अक्यूमुलेट करने में हेल्प करेंगे।
जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से गौरव। गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम।
गुड इवनिंग
सर। अबाउट दिस टैक्सेशन फॉर NRIs व्हेन दे रिडीम, व्हाट इज द टैक्सेशन? क्या उनका TDS हर बार कट जाएगा? 1 लाख का बेनिफिट वो कैसे ले पाएंगे? क्या उन्हें रिटर्न फाइल करके रिटर्न देना पड़ेगा, या फिर वो पहले 1 लाख का छोड़ देंगे उसके बाद टैक्सेशन 20% जो भी अपना TDS काटेंगे? दूसरा सवाल सर, मेरा बेटा 22 साल का है, उसको 10-15 साल के लगाना है, तो क्या रिकमेंड करेंगे फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, मल्टी कैप या फिर लार्ज एंड मिड कैप? बिकॉज लार्ज मिड कैप में वो चर्निंग अच्छी होती है, या फिर बैलेंस एडवांटेज? उसको 15 साल तक कुछ अभी मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे की, वो 10-15 हजार की SIP डालकर बैठ जाएगा, तो उसको क्या आपके हिसाब से क्या फिलोसॉफी रियली अच्छी रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म 15 साल के लिए, एक फ्रॉम द बेस्ट रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू? थैंक यू।
सी, रिगार्डिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई वुड से कि जो भी इसका TDS होता है वो आपको जब भी फंड हाउस देगा तो वो आपको तभी काट लेगा, एंड आपको रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी जैसे जो भी होता है, क्योंकि आपका फॉरेन इनकम है, और अगर आपका ये TDS है तो वो आपको रिटर्न में बाद में आप भर के क्लेम कर सकते हैं। तो TDS आपका हर बार कटेगा, जब भी आपको आप रिडीम करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको फंड हाउस TDS काटेगा जो भी आपके कैपिटल गेन्स होंगे। एंड रिगार्डिंग योर सेकेंड क्वेश्चन फॉर योर सन, सो आई वुड से कि लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप तीनों फंड्स अच्छे हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज भी अच्छा है, बट हम लोग नॉर्मली प्रिफर करते हैं कि कोई सा ऐसा फंड देखा जाए जो कि एक स्टैटिक एलोकेशन हो। बैलेंस्ड एडवांटेज एक हाइब्रिड फंड हो जाता है, जबकि बाकी तीनों जो आपने बताया वो प्योर इक्विटी है, वो केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा बैलेंस एडवांटेज में प्रॉब्लम यह है कि उसमें जो इक्विटी और फिक्स इनकम का प्रपोर्शन है वो कभी भी चेंज हो जाएगा, आपको आपकी नॉलेज में नहीं रहेगा। तो कभी ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा फिक्स इनकम में इन्वेस्ट कर रहा हो जबकि आपका होराइजन है 10-15 साल। तो आमतौर पे हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपने पहले कभी भी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया तो इट्स बेटर दैट यू गो विद एन अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जिसमें एक फिक्स एलोकेशन रहता है, 70% इंटू इक्विटीज एंड 30% इंटू फिक्स इनकम। So I would say either go with aggressive hybrid if you want to be on the conservative side, but in case he is very confident about investing in equities, have, you know, tasted or have, you know, invested in equities before, then maybe a flexi cap, large and mid cap, or a multi cap, either of the three would work.
Right. And let's go across to Mumbai now, where we have Ravi joining us on the program. Good evening, Ravi, and welcome to Market Mantra.
Namaskar, Market Mantra ki team ko.
Namaskar.
Sir ji, mujhe janna tha ki, jaise ki hybrid fund ho gaye, jaise ya dusre equity fund ho gaye, wo zyada achhe hote hain compared to sectoral fund. But agar sectoral fund mein invest karna ho, jaise ki aapka jo ईवी व्हीकल में जो चिप सेट लगते हैं उनसे मैन्युफैक्चरिंग वाले या सोलर सेक्टर से जो कन्वेंशनल एनर्जी के अलावा है नए नए, तो उसमें कुछ सेक्टर हैं ऐसे जिसमें इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा किया जा सके?
ओके, यस आकार, व्हाट वुड यू से?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही रिस्की होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और वहीं पे अगर आप एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपको इन कंपनीज का जिसमें सेक्टोरल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां का आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। सो जो डाइवर्सिफाइड है उसकी बेसिकली एक्सप्लेनेशन ही ये है कि वो अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस कंपनीज इन्वेस्ट करता है, तो बहुत संभावना है कि इन कंपनीज में आपका फंड मैनेजर वहां भी इन्वेस्ट कर रहा होगा। और रही बात अगर आपको कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी कंपनीज के लिए देखना है, तो एक एसबीआई का एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड भी अभी आया था हाल ही में, और कुछ टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक सेक्टोरल फंड्स भी है। बट इनमें जैसे मैंने पहले बताया, सबसे बड़ा नुकसान यही रहता है कि वो पूरा का पूरा पैसा आपका उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर कभी उस सेक्टर का बुरा वक्त आएगा, जो कि अक्सर आता है, एक साइक्लिकल होते हैं, जब वैल्यू नीचे गिरेगी तो आपका पूरा फंड नीचे गिरेगा, आपको डाइवर्सिफिकेशन का ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा।
जी, अगले कॉलर हैं दिल्ली से वरुण। वरुण, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
मार्केट मंत्रा टीम और एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन, जैसे म्यूचुअल फंड में जैसे हमारे जो पोर्टफोलियो रहते हैं, जैसे एक्सपर्ट बताते हैं कि उसका जो डिविडेंड मिलता है एनएवी में रिफ्लेक्ट करता है, तो हमारा ईटीएफ के संपर्क में, जैसे हमारे पास ईटीएफ है उसके जो पोर्टफोलियो में शेयर है, तो उसका जो डिविडेंड मिलता है तो क्या उसको इन्वेस्टर को फायदा होता है? अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि डीएसपी मिड कैप वो अच्छा परफॉर्म इधर नहीं कर रहा है, और कई बस यही। थैंक यू।
देखिए, जो आपका डीएसपी मिड कैप फंड है उसकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ टाइम से अच्छी नहीं चल रही है, तो बहुत ज्यादा उसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रह रही है, तो अगर तो उसमें आपका कुछ पैसा है तो मैं कहूंगा कि अभी इतना खराब नहीं है कि आप उसको बेच के निकल जाए, आप अभी उसको रखे रह सकते हैं, आप उसमें इन्वेस्टेड रहिए। बट कुछ उसमें आप नई इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स भी अभी मत करिए। अगर आपको मिड कैप फंड में करना ही है तो उसके लिए आप कोई दूसरा मिड कैप फंड देखिए, बट इसमें अभी और मत करिए, थोड़ा सा इसको वक्त दीजिए, होपफुली ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। और रही बात आपकी ईटीएफ के डिविडेंड्स की, तो वो है जो आपका ईटीएफ में एग्जैक्टली मैं आपको नहीं जानकारी दे पाऊंगा, बट जैसे स्टॉक्स में आता है तो वो उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। बाकी इस पे मैं आपको अगले बार में इस पे थोड़ा सा पढ़ के आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा।
राइट आकार, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट गोल्ड। यू नो, वी आर कैरिंग अ स्टोरी इन आवर बुलेटिन एज वेल टुडे दैट यू नो इट्स द फिफ्थ कंसेक्यूटिव वीक ऑफ यू नो गेन globally, and we have seen a reflection of that in the domestic gold prices as well. So people's attention is being drawn by the yellow metal. Are there, you know, really nice options as far as mutual funds are concerned, where, you know, if an investor wants to take the benefit of rising gold prices, or if he thinks that there is potential, he can invest in mutual funds and gain from the you know, increase in gold prices?
See, we do definitely have gold mutual funds as well as gold ETFs, and there are quite a few options. But having said that, you know, once you are planning to invest in gold, it's better that you opt for a sovereign gold bond, because you know, there are multiple benefits. One is that over and above the appreciation in the price of the gold, it gives you 2.5% additional guaranteed interest every year. More than that, if you hold the sovereign gold bond till its maturity, which is for the tenure is for 8 years, the capital gains on maturity is totally tax exempt. So that's the best part. But, you know, don't invest too much in gold because it's an unproductive asset class. Yes, it does, you know, shine whenever there is a fall in the equities market, as it is right now whenever there is a, you know, global uncertainty. But it may not help you, you know, accumulate a larger amount of wealth over the long term. Even if you look at the returns right now, though the last 1 year returns are around 20%, if you look at the 10-year return, it's only around 8%, which is not adequate.
Right. And let's go across to Kolkata, where we have Prashant joining us on Market Mantra. Good evening and welcome to the program.
Sir, good evening, sir. Matru Pinko, sir.
Ji, apna prashan puchhiye.
Sir, maine to 2-3 4 years se mere aise tax saving fund mein invested reh raha hu. So, pichle 6 months or 1 year, मैंने लगा जो उसका रिटर्न थोड़ा कम है उसका पीआर से जैसे एसबीआई सिक्योरिटी टैक्स फंड और क्वांट टैक्स फंड उसके कंपेटिवली उसका रिटर्न कम आया था तो मैंने उसका बना रहना चाहिए मेरे एसेट टैक्स में और कुछ एसबीआई और क्वांट में इन्वेस्ट करना चाहिए
राइट राइट प्रशांत
नहीं आप अभी अपना मेरा एसेट में चालू रखिए आप उसी में अपने एसआईपी करते रहिए या उसी में इन्वेस्टेड रहिए देखिए वो अच्छा फंड है और मैं आपको यहां पे दो चीजें बताना चाहूंगा पहली तो ये कि देखिए हर फंड की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब वो थोड़ा सा कभी आपको बाकियों से कम शॉर्ट टर्म बेसिस पे रिटर्न देगा और कभी ज्यादा देगा बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा फंड नहीं बचा हमेशा एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसकी रिटर्न की कंसिस्टेंसी देखनी चाहिए और वहीं जो क्वांट का फंड है वो क्वांट का जो आप फंड कह रहे हैं कि उसने अच्छे रिटर्न दिए है उसने अच्छे रिटर्न दिए काफी अच्छे रिटर्न दिए है उसमें कोई शक नहीं है लेकिन वो एक अनकन्वेंशनल स्ट्रैटेजी यूज करता है आमतौर पे जो भी एक इन्वेस्टिंग के लिए स्ट्रैटेजी अच्छी मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि बाय एंड होल्ड जिसको हम कहते हैं कि आप स्टॉक के बारे में रिसर्च करिए उसमें इन्वेस्ट करिए और लंबे समय तक रहिए बट जो क्वांट में एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी यूज होती है वो बहुत ही एक हाई चर्न वाली होती है उसमें एक क्वांट पैरामीटर्स के बेसिस पे अक्सर फंड खरीदे स्टॉक खरीदे बेचे जाते हैं जल्दी जल्दी जिसका इफेक्ट अभी देखना बाकी है कि जब मार्केट गिरता है या लंबे समय में वो कैसा परफॉर्म करता है
राइट एंड लेट्स टेक अ लुक एट द बैंकिंग सेक्टर एज वेल द कंट्री इज द लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर एचडीएफसी बैंक यस्टरडे रिपोर्टेड अ स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ऑफ 16,511 करोड़ रुपीज फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अगेंस्ट द स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट ऑफ 16,373 करोड़ रुपीज इन द प्रीसीडिंग डिसम्बर क्वार्टर एचडीएफसी बैंक मर्ज्ड विद इट्स पेरेंट हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इन जुलाई विच मीन्स इट्स रिजल्ट्स आर नॉट कंपेरेबल ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस HDFC's gross non-performing assets ratio stood at 1.24% at the end of March, compared with 1.26% 3 months earlier. Similarly, net NPA increased marginally to 0.33% from 0.31% in the previous quarter. Gross NPA amounted to 31,173 crore rupees, while net NPA stood at 8,091 crore rupees during the period. The bank announced that its board of directors recommended a dividend of 19.5 rupees per equity share for the year ended 31st of March 2024.
जी आकार कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
थैंक यू एंड वी वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल आर कॉलर्स फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टुडेज प्रोग्राम सो दैट्स इट वी विल हैव टू कॉल इट अ डे बट बिफोर वी क्लोज लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द टॉप स्टोरीज India's net direct tax collection surges 17.7% to 19.58 lakh crore rupees for the financial year 2023-24. Global gold prices surge for the fifth straight week with a jump of 2% on fresh geopolitical tensions. And HDFC Bank reports a standalone net profit of 16,511 crore rupees for the January-March quarter of financial year 2023-24. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye.